ओम शांति। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर वर्तमान जो समय है, जो हमारे पास में है, वर्तमान मोमेंट, इसी का बहुत बड़ा महत्व है। जो बीत चुका वो तो बीत गया, और फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ये सारे सृष्टि ड्रामा के अंदर ये वो पल हैं जब भगवान और बच्चे आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, जब हमारा आपस में मिलन होता है कि मैं और भगवान आपस में बात कर रहे हैं। स्वयं वो वरदाता जिसने हमारे जीवन को वरदानों से भर दिया, हमारा समय वरदानी समय बना दिया, हमारे संकल्प वरदानी संकल्प बन गए, हमारे बोल वरदानी बोल बन गए, दृष्टि वरदानी बन गई, चाल चलन वरदानी बन गई। तो ये सारे सृष्टि या सारे कल्प के अंदर ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये वर्तमान जो है। अगर हम ऐसी स्मृतियों में रहते हैं तो हमारी स्थिति हमेशा ऊपर रहती है, ऊंची रहती है। अगर हमारी स्मृतियाँ कमज़ोर हैं, साधारण हैं, नेगेटिव हैं, गिल्ट कॉन्शियस वाली हैं, तो हमारी स्थिति भी वैसी बनी रहती है, और वो सारी चीज़ें हमारे चेहरे पर प्रैक्टिकल में दिखाई देती हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए स्टैंप तो तैयार की, सबने सेवा की, पावरफुल योग लगाया, मनसा सेवा की, भाग दौड़ की, संबंध संपर्क के लिए, किस लिए कि संसार में ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। लेकिन अगर हमने अनुभव नहीं किया वो वाला, तो दूसरे कैसे अनुभव करेंगे। तो हमारा जीवन एक अनुभव की प्रयोगशाला है, जिसके लिए बाबा ने हम सबको अनुभव की आंखें दी हुई हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हुआ है। सारे दिन में हम इन अनुभवों में कितना खोए रहते हैं, उन अनुभवों के कितने हमारे पास खजाने हैं, वो स्मृतियां हैं या वो तस्वीरें हैं, वो यादें हैं, तो प्रैक्टिकल में महसूस होगा कि बाबा हमारे आसपास ही है, नहीं तो केवल एक कहने मात्र गीत बजता रहता है। बाबा ने बताया ना, गीत तो बजता है लेकिन तो बीच में आ जाता है। तो ये बहुत सुंदर समय है, ये सबसे बेस्ट टाइम। जब भी हम मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो हमेशा हमारा अधिकतर यही संकल्प रहता है कि मैं अभी भगवान से बातें करना जा रहा हूँ, मैं और भगवान दोनों आपस में योग लगाएंगे, बाबा भी साकाश देंगे, हम भी साकाश देंगे, बाप और बेटा जैसे इकट्ठे बैठे हुए हैं। क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए कुछ गहरी फीलिंग चाहिए, एक अपनत्व का भाव, वो महसूस था कि सचमुच वो मेरा है। जैसे लौकिक रिश्ते कैसे अपने लगते हैं, छूटते हैं, वो भूले भी नहीं भूले जाते हैं, जबकि पता वो तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, जबकि पता है कि उन सब सांसारिक रिश्तों में स्वार्थ समाया हुआ है, उनमें रस नहीं है, वो टेम्परेरी हैं, अल्पकाल के हैं, चिरस्थाई नहीं हैं, विनाशी हैं, उनमें विकारों की बदबू है। ये सब जानने के बाद भी वो वाला जाल, लौकिक रिश्तों वाला जाल सहज भूलता नहीं है, जबकि पता उनका परिणाम दुखी है। लेकिन एक तरफ हमको ये भी पता है कि ये अविनाशी रिश्ता है हमारा, परमानेंट का है, जन्म जन्म का है। भले परोक्ष अपरोक्ष रूप से भगवान को याद तो करते आए हैं ना, लेकिन अब हमको उसकी समझ मिली है, वो प्रैक्टिकल में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, वो हमारे पास में आ गया है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। कितना वंडरफुल है कि जो हमारा परमानेंट साथी है उसको हम भूल जाते हैं। कितने हम बहादुर हो गए हैं कि सर्वशक्तिवान को भी हम अपने से जुदा कर देते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम्हारी खुशी को चुरा ना ले, जब तक जीना है सदा खुश रहना है। क्यों, क्या वाली बातें आती हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे, फिर ये बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सारे दिन में श्रापित करते रहते हैं। स्वयं को वरदान देने की बजाय स्वयं को श्रापित करते जाते हैं। कहाँ कहाँ श्रापित करते हैं कि हम बाप को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। वो सारी स्मृति देह के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जो हमारी ओरिजिनल संपत्ति है, अविनाशी संपत्ति है, जो स्वयं भगवान हमको दे रहा है, उसको हम भूल जाते हैं। अर्थात हम अपने आप को बहुत बार दिन में श्रापित करते रहते हैं, चाहे वो अपने बोल से, चाहे वो अपने संकल्पों से, चाहे संबंध संपर्क में आने पर दूसरों के अवगुण देखने से। बार 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 हम अपने आप को श्रापित करते हुए बोझ अपने आप खुद ही चढ़ाते रहते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन बड़ा सूक्ष्म होता जाता है। जैसे बाबा कहते हैं मोटे मोटे बेकारों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो उसके बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वो बैठी है ना छोटी बच्ची एक, तो बाल बच्चे ऐसे प्यारे लगते हैं। वो कौन कौन से हैं, गपशप मारना अच्छा लगता है ना, कानों को अच्छा लगता है, दूसरे की निंदा करना, क्योंकि टाइम अच्छा पास हो जाता है, उसमें खुशी भी मिलती है, निंदा सुख जिसको कहते हैं, क्योंकि हमको हम दूसरों को जताना चाहते हैं कि हमारे पास ना बहुत इन्फॉर्मेशन है कि फलानी कैसी है, फलाना कैसा है, मना हम बहुत होशियार है, दूसरे को परख लेते हैं हम। लेकिन ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को वरदानों के बजाय श्रापित कर रहे हैं, अपने आप से जैसे धोखा कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है लेकिन सरल भी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने पर ध्यान देते जाते हैं तो ये बहुत सहज है, लेकिन ध्यान देने के लिए भी बहुत अटेंशन चाहिए। तो ये शिवरात्रि शिव जयंती की मुरली है। सारे त्योहारों में देखा जाए तो बाबा कहते हैं प्रमुख त्यौहार कौन सा है, शिव जयंती, शिवरात्रि, जिसको संसार में कहा जाता है। तो संसार में भी शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है उस दिन में सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा अवतरित होती है। उस दिन में स्वयं भगवान भोलेनाथ के रूप में अपना सब कुछ लौटा देता है। अगर थोड़ा सा भी व्रत रखते हैं तो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वो तो हम अंधश्रद्धावश करते थे, अभी तो हम उन चीज़ों से परे हो गए। ज्ञान है, समझ है, और समझने के बाद भी अगर भोलेनाथ से हम अपना जो लेना चाहिए उसको उससे वो हम नहीं लें, अपना अधिकार, अपना हक, तो फिर क्या कहेंगे। तो बाबा तो सचमुच बहुत भोला है, लेकिन अपने को भी थोड़ा भोला बनना पड़ेगा। किससे, बुराइयों से, विकारों से, जिसको बाबा कहते हैं इनोसेंट, इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात वो निर्विकार की अवस्था, वो विकारों की अविद्या हो जाए, वो बुराइयों की अविद्या हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देंगी, दिखाई तो देंगी, लेकिन वो हमें प्रभावित ना करें, हम डिटैच रहें, साक्षी होकर देखते रहें, क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे बाबा ऊपर से साक्षी होकर देखते रहते हैं, कभी हलचल में आते हैं बाबा, कभी दुखी होकर रोते होंगे, वो खुशियों का सागर है, तो हम भी उसके बच्चे हैं। लेकिन उस लेवल तक हम अपनी अवस्था को पहुंचाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, और हम थोड़ा भी सच्चे मन से पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत प्राप्ति होती है। जो बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था, मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा, सेकंड का सौदा है। एक सेकंड में जो बाबा कहते हैं दिल से, बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा हाजिर होता है, हो जाता है। तो सचमुच बाबा हाजिर हो जाता है। जैसे आज बाबा कहते हैं मुरली में, पूछा सामने वालों को, अगर अनुभव नहीं किया ब्रह्मा बाबा का तो क्या करो, क्या करो? अगर ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया तो अपना नाम नोट करके दादियों को दो, अनुभव कराएंगी, है ना। तो आज शाम को मधुबन निवासियों की क्लास थी ना, जयंती दीदी जी क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी वो बाबा के साथ की अनुभव की बातें बताई। तो सचमुच हम उन्हीं पलों में चले गए, 1957, 1955, वो सारी बातें बताई कैसे ब्रह्मा बाबा पालना करते थे। तो सचमुच मन भर के आता है कि जो सृष्टि का आदि पिता है, कैसे उस समय मेहमान जो बाबा के घर में बच्चे आते थे, बारिश के बीच पहुंचते थे, अंधेरे में पहुंचते थे, ठंड भी होती थी, लेकिन बाबा उनके लिए पहले से गर्म पानी तैयार करके रखते थे कि मेरे बच्चे आएंगे, और उनका गर्म पानी से उनकी उनके पाँव की धुलाई करते थे। तो भगवान अगर ऐसी पालना करता है तो हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। हम सब भी उसी कालखंड को अनुभव करें। हर एक ब्राह्मण ने जीवन में ब्रह्मा बाप के साथ का तो कुछ ना कुछ अनुभव किया ही होता है। अगर हम ब्रह्मा बाप के जीवन की कहानी पढ़ें तो हमारा जो मन है, हमारे जो संकल्प हैं, उसी कालखंड में चले जाते हैं और वो अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी उसी कुल के हैं, उसी परिवार के हैं, उसी बाप के बच्चे हैं, इसलिए वो हमारी स्मृतियाँ अंदर में हैं। इसलिए बाबा कहते बार बार क्या करो, अपने अनुभवों की कहानियों में कुछ में उसमें खो जाओ। पिछले संडे की मुरली में था ना, रमणीक अनुभवों की कहानियाँ, खाली बिंदु बिंदु नहीं सोचो, बिंदु खिसक जाता है। तो क्या करो, ब्रह्मा बाबा की जीवन की कहानी पढ़ो, दादियों के जीवन की कहानी पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगाने के लिए। पल पल हम बाबा के प्यार में खोए रहे, वो उसके भगवान के प्यार का रस, वो अतीन्द्रिय सुख, उसके प्यार की बरसात जैसे हमारे ऊपर हो रही है, जैसे हम उसमें खोए हुए हैं, संसार की शुद्ध बुद्ध से परे हैं, अपने देह की शुद्ध बुद्ध से परे हैं। तो ये अनुभव जो है, बाबा कहते हैं सबसे बड़ी क्या है, ये अथॉरिटी। और आज के मूल्य में कहा अनुभव की आंख, तो ये सबसे बड़ी अनुभव की आंख है। सवेरे सुदेश दीदी बता रहे थे ना कि कोई सामान लेने जाता तो पहले से अनुभव कर लेते हैं ना हर चीज़ का, तो ऐसे अपनी अनुभव की आंखों से, अर्थात अपने मन से बाबा का अनुभव करें हम, है ना। तो सब ने बाबा का तो अनुभव किया ही होगा ना, तो ये पल पल अनुभव करने का टाइम है, चाहे वो शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा है, दोनों को अपने आसपास में महसूस करना है, और वो सचमुच हमारे साथ साथ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे अपने आप को जुदा कर देते हैं। जुदा क्यों कर देते हैं और उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है, उसके जैसा पुरुषार्थ करेंगे तभी उसकी आंख हमारी तरफ आएगी। अगर हमारे पास में कोई मेहमान आया बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ देख रहा है और हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो क्या वो सोचेगा भैया, मेहमान क्या सोचेगा वो? तो बाबा हमारे अंग संग में है, सोचे हम महसूस करें कि वो हमारे आसपास में बैठा हुआ है, बातें करेंगे उससे, तो उसका प्यार हमारे पर बरसेगा। अगर खाली योग में ही बैठे हैं और ये भी संकल्प नहीं है कि आसपास कौन है, अर्थात बाबा मेरे अंग संग है, तो हमारा मन दूसरी दूसरी बातों में इन्वॉल्व रहता है, और जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन से हमारे मन बुद्धि पर उसका प्रभाव, हमारी बॉडी पर, हमारे आसपास के वातावरण, उनके वाइब्रेशन उस पर वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो बाबा को याद करना सहज है, लेकिन थोड़ा अपने चिंतन को बढ़ाना है, उसके साथ का अनुभव करना है, बाबा से बातें करनी है, संबंधों का सुख लेना है, उसके रस में डूब जाना है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हमको बाबा को गहराई से अनुभव करना है। और सचमुच अभी ये तो थोड़ा सा टाइम है, संगम युग का देख रहे हैं हम, संसार की ओर अगर दृष्टि दौड़ाते हैं तो संसार की परिस्थितियों को देखते हुए कैसा लग रहा है ना। जयंती दीदी पूछ रहे थे कि संगम युग अच्छा लगता है या स्वर्ग अच्छा लगता है, तो संगम युग अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार की जो आत्माएं दुखी हैं उनको हम शांति नहीं देना चाहते तो दीदी जी कहते हैं संगम भी अच्छा है और सतयुग भी अच्छा है ना, क्योंकि संगम युग पर जो हम सुख शांति आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो दूसरी आत्माएं नहीं कर पा रही हैं, उनको अनुभव कराना है तो वो भी उनके लिए शांति धाम की भी यात्रा उनको कराना जरूरी है, और वो तब होगी जब अंत में सारा अंतिम गेट खुल जाएगा, है ना, शांति धाम का मुक्ति धाम का दरवाज़ा जो बंद है अभी तक, उसको खोलने के निमित्त कौन है, हम सभी हैं। जब तक हमारी अवस्था वैसी नहीं हुई तब तक गेट कैसे खुलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आज की मुरली में क्या क्या होमवर्क है जो हमको करना है, अभी आज से संडे से लेकर अगले संडे मॉर्निंग तक, है ना, एक तो ये मुरली को, इस मुरली का होमवर्क करना है, दूसरा साथ साथ में आने वाले संडे की मुरली तो वैसे उस दिन भी पढ़ते हैं लेकिन आजकल सारी अव्यक्त वाणियों में भी होती है, तो पहले से उसकी ना प्रैक्टिस करते रहना धीरे धीरे दोनों मुरलियों की, और साथ साथ में पिछले संडे की भी मुरली जो बीत गया है उसको ही बुद्धि में दौड़ाते रहना, ताकि मन को अगर बिजी रख देंगे तो माया के आने का चांस नहीं रहेगा, नहीं तो माया चांस लेती है और बार बार हमको क्या कहते हैं, कल मुरली में था ना, माया क्या करती है, थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है ना, कल था ना बाबा ने कहा ना मुरली में, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, धर्त पर ये धर्म ना छोड़िए, अगर पालना नहीं की तो डंडे पड़ेंगे डंडे, तो बाबा थोड़ा मारेगा लेकिन हमारे अपने ही कर्म, हमारी अपनी ही वो आदतें हमको तड़फाएंगी भटकाएंगी। तो आज कौन सी मुरली है ये, हाँ जी, 9 मार्च 1994, तो और आज भी 9 तारीख है, 9 अप्रैल, तो मुरली का टाइटल क्या था, एकदम एक्यूरेट टाइटल बताओ, हाँ न्यारे और प्यारे, हाँ और तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा ना, मन को काम नहीं देते हम तभी तो थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो मन को काम देना, क्योंकि बाबा के शब्दों में महावाक्य में बहुत ताकत भरी हुई है, वो बाबा के शब्द ही बाबा हैं, ऐसा नहीं सोचना कि बाबा ऊपर बैठा हुआ है, उन शब्दों में बाबा समाया हुआ है। तो क्या टाइटल था, डैश 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 डैश, सारे डैश हो गया, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुखमय अवतरण शिव जयंती, क्या बताया फिर से बोलो भी सभी, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती, है ना, तो शिवरात्रि पर हम कितने जागरण किए हुए व्रत किए हुए हैं, तो अभी तो प्रैक्टिकल में उसके साथ का अनुभव करना, अभी तो बाबा को ऐसे चिपक जाना चाहिए कि वो छूटे ही ना, अगर बाबा हमको अपने आप से जुदा कर रहे तो भी ना हो पाए, इतना उसके साथ कंबाइंड हो जाने का है। तो आज बाबा किससे मिले हैं, कौन से बच्चों से मिले हैं, पूज्य सालिग्राम बच्चे, सालिग्राम तो सारे संसार की आत्माएं हैं लेकिन हम बच्चे हैं पूज्य सालिग्राम, और कौन मिला हमसे, त्रिदेव रचयिता, तो बाबा त्रिदेव रचयिता हम सब आत्माओं से सालिग्राम पूज्य आत्माओं से मिल रहे हैं, तो सालिग्राम आत्माओं के क्या लक्षण बताए हैं, बाबा कहते हैं मेरी तो सिंगल पूजा होती है, हाँ डबल पूजा होती है, किस किस रूप में, एक तो सालिग्राम के रूप में और दूसरा देवता के रूप में। अब हम अपने आप को हमें चेक करना है कि हम पूजने लायक बने हैं, पूजने लायक होंगे तो क्या लक्षण होने चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होगा, निर्मल स्वभाव होगा, और उनकी सूरत कैसी होगी, हर्षित मूरत फरिश्ता मूरत, पिछले संडे की मुरली में था ना फरिश्ता की कितनी निशानियां बताई थी, 9 निशानियां याद हैं सारी, नहीं याद है कोई बात नहीं कर लेना दोबारा, तो याद करनी है वो सारी, फरिश्ता अर्थात न्यारा प्यारा, है ना, दे और दे से संबंधों से परे, बाप समान हैं जी, सदा हल्के अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, लाइट वाले डबल, बिल्कुल डबल लाइट वाले, अच्छा जल्दी जल्दी ऐसे तो बोल देने का ये होता है मन बुद्धि को जल्दी जल्दी चलाने का, वेरी गुड। तो अपने आदि अनादि संस्कार से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, और फरिश्ता अर्थात सर्वसंबंध बाप से, और फरिश्ता अर्थात हाँ निर्माण निर्विकारी निमित्त निर्माण और निर्विकारी सबका कल्याण करने वाले। तो ऐसे बुद्धि को थोड़ा सा प्रेशर डालते ना, क्योंकि स्मृतियाँ तो आई बेहद का सदा, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति है ना, तो ये सारी कितनी धीरे धीरे बातें। तो ऐसे आपस में ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा करने की तो अपन सबको आदत है ही है ना, भले ज्ञान नहीं करते तो दूसरा कर लेते हैं, चर्चा तो कर ही लेते हैं, ये तो हम सब में क्वालिटी है ही है, क्या करने की, चर्चा करने की। लेकिन कौन सी चर्चा करनी है, थोड़ा चेंज कर देना उसको, करना क्या, और पुरुषार्थ तो वास्तव में थोड़ा चेंज ही तो करना है, वो ही चेंज करना है जिससे हमको दुख हो रहा है उसको सुख में परिवर्तन कर देना। तो बुद्धि को थोड़ा प्रेशर डालने का, ताकि उसकी नसें खुल जाएं। तो हम सब आत्माओं की डबल रूप में पूजा होती है, तो देवताओं के बता रहे थे कि देवता अगर हम हैं, पूज्य बनने लायक हैं, बन रहे हैं, तो उसके लक्षण क्या है, तो उसका अनुभव करना है कि मंदिर में जो मूर्ति बैठती है, मूर्ति रखी जाती है, तो उससे भक्त क्या क्या अनुभव करते हैं, तो अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वो। तो ये देखना है कि मैं इस संगम ऊपर जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, बीके नॉन बीके कोई भी है, सभी हम उनको कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं कितना कहाँ तक पूर्ण कर पा रहे हैं, कहाँ तक उनको हम प्रसन्न कर पा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। भगत देवियों के आगे किस लिए जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो हम सभी तो वही हैं, और हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अगर हम अपनी समस्या से निकल पाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो सब समस्याओं का समाधान बाबा तो हमको बताते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ऊंची स्थिति पर रहो, ऊंची स्थिति पर रहने से बाकी सब बातें नीचे दब जाती हैं। अर्थात हम ऊंची स्मृतियों में रहते हैं, सुमान में रहते हैं। सुमान एक साधारण शब्द हो गया है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे बाबा के त्याज की मूल्य में कहा ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा, तो बाबा को हमारे ऊपर कितना फेथ है, तो वो हम हैं, वो स्वीकार करना है उसको। लेकिन बिना स्वीकार किए हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो पाता, हमारे स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। अपने आप को जो अनुभव होना चाहिए कि हाँ मेरा धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, मेरी अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के अंदर शक्ति बढ़ रही है, वो दृढ़ता बढ़ रही है, वो महसूस नहीं होती है। क्यों, सुमान को हम केवल शब्दों तक ले लेते हैं उसको, तो उसको गहराई से अनुभव करना और उसके लिए चिंतन करना आवश्यक है। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो मेरे से भी ज़्यादा ऊंचे हो, क्यों, डबल पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में और देवता के रूप में। फिर बाबा कहते हैं कहीं कहीं बच्चे बाप को ताज भी पहनाते हैं, कहीं कहीं शिवलिंग के ऊपर ताज पहनाते हैं, लेकिन बाबा को तो शरीर है ही नहीं है, मस्तक है ही नहीं है, ताज कहाँ पहनेंगे, लेकिन ये बच्चों का प्यार है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बाप को मनाने के लिए प्यार तो करना पड़ता है, तो बच्चे भी बाप को ताज पहना देते हैं। बाबा तो भोला वाला है, वो भी बाबा ही मुस्कराते होंगे है ना, और बाबा हम सब बच्चों को डबल ताज पहनाते हैं, कौन सा, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज, राजाई का ताज। तो देखो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, इतना प्यार कोई और करेगा, ये सारा प्यार सूक्ष्म है, अदृश्य है, और जो सूक्ष्म चीज़ होती है बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। तो इस सूक्ष्म खुराक को खाते रहना है, ये ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, ऊपर ऊपर हवा में नहीं है, ये बहुत गहराई से उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, उस ज्ञान के साथ खेलना पड़ता है, उसके साथ डांस करनी पड़ती है, नए नए दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा थोड़ा वो ज्ञान हमारे अंदर समाता है। तब तब लगता है कि इस ज्ञान में बाबा की पावर भरी हुई है, उस ज्ञान में बहुत सारा अनुभव भरा हुआ है, उस ज्ञान में हमारी जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान भरा हुआ है। लेकिन बार बार उसको हम देखेंगे तो जैसे कमरे में बंद है, अंधेरा है, और हमें पता है हमारी समस्या का समाधान एक कागज़ की चिटकी में रखा हुआ है, लेकिन जब तक वहाँ लाइट नहीं करेंगे तो कागज़ दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही हम अपने अंदर, बाबा कहते हैं ना ज्ञान का दीप जलाओ, था ना आज की मुरली में, दीप जलाओ। तो बार बार ज्ञान को स्पर्श करना है, अनुभव करना है, महसूस करना है, ज्ञान से प्यार करना है। ज्ञान से प्यार माना ज्ञान दाता से प्यार। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, बाप को खुशी है, बच्चों से ज़्यादा खुशी किसको है, बाबा को है। बाबा कहते हैं मेरे से ज़्यादा खुशी तो बच्चों को है, क्यों? बच्चों का बर्थ जो सो बाप का बर्थडे है ना। सारे कल्प में बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के साथ अभी रहता हूँ, ना बाप अकेला कुछ कर सकता है ना बच्चे। बाबा की कितनी निरहंकारिता है कि अकेला क्यों नहीं कर सकता है, सब साक्षात्कार कौन कराता है भक्ति में, उसमें ब्रह्मा बाबा थोड़े होते हैं उस समय, तो साक्षात्कार कैसे कराते हैं, कराते कि नहीं। बाबा कहते हैं ना भक्तों को मैं साक्षात्कार कराता हूँ, तो किसी ना किसी रूप में तो बाबा की ताकत काम करती है उसी रूप में। लेकिन बाबा इसमें कितना निर्माण है कि बच्चे हमेशा मेरी छत्रछाया में रहें, हर दम हर पल मुझे साथ में रखें, तो बाबा ऐसे युक्तियाँ बतलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप बच्चों के बिना अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे बच्चे भी बाप के बिना अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं बच्चों में मैं आ जाता है, क्योंकि आदत पड़ी है ना लंबे समय की। तो बाबा ने थोड़ा सा ही टच किया, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाबा को पता ज़्यादा तो मैंपन है ही है, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दिया बहुत है, बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे आगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है, क्योंकि जब भी हम ब्राह्मण जीवन हमारा जन्म होता है, उसके बाद की योग्यताएँ, विशेषताएँ, सेवा करने की कला, वो सब चीज़ें कहाँ से भरी गई, उसके बिना तो हमारा कुछ जीवन था ही नहीं, निरर्थक था एकदम। बाबा कहते ना कहाँ पड़े थे संसार में, और कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया। तो बाबा का कितना उपकार है हमारे ऊपर, कितना आशीर्वाद है, कृपा, ब्लेसिंग है, दुआएं बरसती रहती हैं। तो अकेला बाप भी नहीं बच्चों की सेवा कर सकता है, इसलिए बाबा कहते चाहे साकार में चाहे आकार में मिलन मनाना होता बच्चों से, तो ब्रह्मा बाबा जरूरी है, बिना ब्रह्मा बाप के मिलन नहीं मना सकते हैं। तो हमेशा हमें अपने आप को बाबा की कंपनी में रखना है, साथ साथ रखना है। ये साथ अभी केवल संगम पर ही है साथ, अभी बाबा कहते हैं अभी अभी दिव्य जन्म भी साथ साथ हुआ, और क्या करते हो, दो बातें और करते हो, तीन बातें बताई साथ साथ की, कौन सी? हाँ, दिव्य जन्म, बच्चे का भी जन्म साथ में, बाप का भी जन्म साथ साथ में। दूसरा, विश्व परिवर्तन का कार्य भी हम और बाप बच्चे, बाप और बच्चे इकट्ठा इकट्ठा करते हैं साथ साथ। और तीसरा, स्वीट होम भी वापस साथ साथ जाते हैं। तो ऐसी डेट संसार में किसी की है नहीं है, अगर बच्चे और बाप की जो एक समान डेट हो, या एक ही मंथ में हो, एक ही समय पर हो, ऐसा किसी का है नहीं। तो ये वंडरफुल विचित्र जन्म है, अलौकिक है, न्यारा प्यारा है। तो हमेशा हमें अपने आप को महसूस करना है कि अंग संग वो हमारे साथ साथ में, वो हमारे बिना रह नहीं सकता, ना हम उसके बिना रह सकते हैं। वो सागर है और हम क्या हैं, मछलियाँ। पानी सागर के बिना मछली कैसे रहेगी, है ना। तो गंगाएं तो है ही हैं, है ना, गंगाएं भी हैं। तो हम वो मछलियाँ हैं जो बिना सागर रह नहीं सकती हैं। तो हमेशा जो अगर मछली बाहर निकली तो क्या होगा, प्राण निकल जाते हैं। तो हमें भी सारे दिन में ज्ञान सागर में डूबे रहना है। ज्ञान सागर में डूबे रहना माने हम योग में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो ये थी तीसरी बात। पहली बात थी पूज, कितनी इस बाबा कहते कितनी श्रेष्ठ स्मृति और ये खुशी रहती है कि डबल पूज्य वाली। और दूसरी बात थी कि कभी अकेले नहीं अपने आप को समझना, हमेशा बाप के साथ में रहना। और तीसरी, ये दिव्य जन्म, ये स्मृति में रखना है कि हम बाप के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो हर कर्म करते हुए हमें ये स्मृति रखनी है कि वो कराने वाला करा रहा है। जो भी हम सेवा करते हैं, करते करते वो स्मृति रहनी चाहिए, और करने के बाद भी बाबा को अर्पित कर देना है, ताकि हमने देखा हल्के रहते हैं और उसके बाद हमारे संकल्प भी नहीं चलते, नहीं तो सेवाओं का मैंपन, वो अहंकार आ जाता है और फिर हमारी ग्रोथ होती नहीं है। अगर ग्रोथ होती भी है तो उसकी जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं होती है फिर, इसलिए सेवा भी बाबा ऊपर समर्पित। तो और साथ में ये सारे दिन में ड्रिल का बताया बाबा ने, स्वीट होम साथ साथ जाना है। तो ये भी सारे दिन में महसूस करना है, क्योंकि मुरली से हमको होमवर्क निकालना है कि हम, मैं और बाबा साथ साथ में स्वीट होम में जा रहे हैं। तो ये तीसरी बात। चौथी बात थी, बाबा ने विशेषताएं देखी बच्चों की, कौन सी? दो विशेषताएं, व्रत और व्रत जागरण एक ही बात है, व्रत जागरण में आ गया, व्रत और डैश, हाँ एक है व्रत, दूसरा है कि स्वयं बलि नहीं चढ़ते, किसी को चढ़ा देते, जब मौत की बात आती थी किसी को आगे कर देते। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना। तो कौन कौन सा व्रत है इसमें, देखो बाबा कितने भक्तों की भी कितनी महिमा की है ना, अभी पीछे देवियों के नवरात्रे थे तो कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आते थे पैदल, 200-300 किलोमीटर थे, बाबा के कहते हैं कितना भी टाइम लग जाए लेकिन वो अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं, पैदल चलते रहते हैं। बुजुर्ग माताएं कितना पैदल चलती हैं, हमने देखा एक बार गिरनार पहाड़ी गए थे, कहाँ गिरनार पहाड़ी, जूनागढ़ में, हाँ 10,000 सीढ़ी है वहाँ, वहाँ बहुत साल पहले हमको दादी जी ने भेजा था, एक बस गई थी तो 10,000 सीढ़ी है और बुजुर्ग माताएं ऊपर चढ़ी जाके, बताओ कितनी ताकत है, कितने श्रद्धा भगवान के प्रति प्यार है वो, तो कितना पैदल करते रहते हैं, अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं, भले वो थक जाएं लेकिन फिर भी व्रत को पूरा करते हैं। और दूसरा व्रत कौन सा बताया, भोजन का व्रत, और बाबा कहते हैं भोजन भी क्या है, हम सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है, और संसार वाले भी भोजन का व्रत करते हैं लेकिन बीमार भी हो जाए तो भी तोड़ते नहीं है वो, इतना दृढ़ प्रतिज्ञा उसके प्रति, दृढ़ संकल्प का व्रत लेते हैं वो, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं, वो व्रत को पूरा करते हैं। हमने देखा ना यहाँ भी श्रमिक आते हैं, जो माताएं आती है नवरात्रों में, पूरा पूरा दिन केवल एक बार चाय पियेंगे, बस पूरा दिन व्रत रखती हैं, 7-7 दिन तक व्रत रखते हैं। तो वास्तव में व्रत में बहुत बड़ी ताकत है, व्रत में, व्रत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम व्रत का हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा है, इसलिए भक्ति मार्ग में जो व्रत रखते हैं तो उससे शरीर का भी शुद्धिकरण होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, तन का शुद्धिकरण होता है, बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि जो हम भोजन थोड़ा छोड़ देते हैं तो शरीर में जो भोजन पचाने की जो ताकत है वो बच जाती है, नहीं तो हम शरीर में अगर ज़्यादा भोजन डालते रहेंगे तो सारी शक्ति वहीं चली जाती है, इसलिए व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सप्ताह में एक दिन तो जरूर व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस समझ के साथ, ऐसा नहीं जबरदस्ती रखना, हर चीज़ समझ के साथ चाहिए, नहीं तो कोई हट से रख लेते हैं और उसका फिर उल्टा का असर भी हो जाता है, और व्रत के नुकसान भी होते हैं, अगर हम लंबे समय तक व्रत रखते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, हाँ जी, शक्ति कम हो जाएगी और चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो मन में थोड़ी खिंचावट से आ जाती है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अगर लंबे समय तक व्रत रखते हैं। इसलिए हर चीज़ की बाबा ने हमको समझ दी हुई है, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना रोशनी, प्रकाश, लाइट, तो हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंधश्रद्धा के साथ कोई नहीं चीज़ करनी है, हर चीज़ अपने अपने व्यवस्थाओं को देखते हुए समझ के साथ करनी है तो हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो व्रत कौन सा व्रत, एक तो भोजन का व्रत, फिर बाबा कहते जागरण का व्रत, कैसे पूरी पूरी रात जागते रहते संसार में लोग, किससे जागे, और बाबा ने हमको कौन से जागरण का व्रत बताया, अज्ञान की नींद से, अज्ञान की नींद अर्थात देहाभिमान, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुराने स्वभाव और पुराने संबंध, लौकिक संबंध में बार बार बुद्धि खींचनी, ये सारी अज्ञान की नींद है ये। तो बाबा ने हम सबको कहा कि घर गृहस्थ में भले रहो लेकिन जैसे घर को सेवा केंद्र समझो, जैसे वो तोड़ निभाओ, वहाँ ट्रस्टी होकर रहो, न्यारे प्यारे होकर रहो, वो हमको एक सेवा का मौका मिला, सुनहरा मौका। जरूरी नहीं है घर में सबको ज्ञान सुनाना, नहीं, सबकी नब्ज देख के उसी अनुसार उनका ट्रीटमेंट करना है तो धीरे धीरे उनको अच्छा लगेगा। अगर हम डायरेक्ट ज्ञान सुनाएंगे और हजम करने की शक्ति नहीं है तो उल्टियाँ करेंगे घर में और बदबू आएगी फिर उल्टियों की, और ऊपर से फिर हम ज्ञान सुनाएंगे, बाबा तो हमारा ऐसे कहता है और तुम ऐसे कह रहे हो, तो डायरेक्ट ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, नब्ज दे के धीरे धीरे युक्ति तरीके से, वहाँ अगर हम ज्ञान नहीं सुना सकते हैं तो दूसरे तरीके से पालना करें उनके, उनके साथ खुशी खुशी बात करें, व्यवहार में खुशी खुशी आएँ, उनके साथ भी घूमने फिरने जाएँ, उनके साथ भी मंदिर में जाएँ, अगर वो मंदिर में जाते हैं भक्ति करने तो हम नहीं जाएँ तो ये भी ठीक नहीं है, हमको भी जाना चाहिए वहाँ, हम अपने दर्शन करके आए वहाँ, वहाँ बैठ के अच्छा योग करें, वो तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होता है हमको अपनी मनसा सेवा का। क्योंकि मंदिर के वाइब्रेशन भी ऐसे वैसे थोड़े होते, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं वहाँ। वो जो प्रार्थना होती है, घंटियाँ बजती हैं, तो हमारी सारी स्मृतियाँ अंदर की जागृत होती हैं। जो बाबा कहते तुम पूज्य स्वरूप हो, तो वो सारी स्मृतियाँ हमारे लक्षण, वो हमारी सारे अंदर के जो वो सारे उनके चिन्ह हैं, संकेत है, वो सब हमें अपने आप महसूस होने लगते हैं कि हम इतने ऊंचे हैं कि भगवान तो कह रहा है लेकिन भगत भी हमको कह रहे हैं। तो मंदिर में जाके अपना योग किया और वो पूजा कर रहे हैं। अगर उनके साथ पूजा भी करनी पड़े तो पूजा भी कर दो, कौन सी बड़ी बात है उसमें। वो आहुतियाँ डाल रहे हैं तो आहुतियाँ डालो। हम भी जब नए नए ज्ञान में आए तो हमको घर में बुलाया, तो घर में एक यज्ञ था, तो यज्ञ में हमको बिठा दिया आहुतियाँ करने। तो एक दूसरे भी भाई थे, वो नहीं बैठे। बोला हम क्यों बैठेंगे इधर। हमने बोला सबसे अच्छा मौका तो विक्रम भस्म करने का यही है, अग्नि जल रही है अपनी सारी आहुतियाँ डाल दो। तो वो अपना सारा मटेरियल यज्ञ में तिल जौ चो लेते सारी लेके, हम भी स्वाहा करते थे तो अंदर से खुशी होती थी और सब लोग दिखते थे तो ये भक्ति भी करते हैं ये तो। अब तो अंदर की बात ही क्या है, और हम वास्तव में हमारी सच्ची भक्ति है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, तुम मेरे सच्चे सच्चे भगत हो। तो हर चीज़ में हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि हमें समाज को जोड़ने का काम मिला है, तोड़ने का काम नहीं मिला है। जैसे घर में माँ बाप का फर्ज क्या होता है, घर को तोड़ना है जोड़ना, जोड़ने का काम होता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी सारे संसार के पूर्वज हो, तो हमारा भी सारे संसार के सारे समाज को जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है, एक माला में पिरोने का काम है हमारा। तो हमें हर चीज़ समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करनी है। तो ये था जागरण। तो कहाँ कहाँ हमको अज्ञान की नींद से जागृत रहना है, अपने आप को चेकिंग करनी है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा विदेशियों से बात करते हैं कि कौन सी भाषा विदेशियों की, रॉयल भाषा कौन सी थी, एक रमणीक भाषा बाबा ने कहा, रॉयल नहीं रमणीक भाषा, रमणीक भाषा बाबा ने विदेशियों की देखी कौन सी, एंजॉय पसंद करते हैं, शांत शांत क्या रहना उनको, मनोरंजन पसंद करते हैं। तो बाबा ने पहले तो मुबारक दी कि चलो व्रत में पास हैं, है ना, बर्थडे मनाया उसकी मुबारक हो, लेकिन हलचल में भी सदा अचल रहना इसकी मुबारक। और तीन बातें बताई जो प्रश्न आते हैं, चार। एक तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो संकल्प ये करो कि कभी मुश्किल शब्द नहीं कहेंगे। तो हमें अपने जीवन में कभी मुश्किल नहीं सोचना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ लगता है, सेवा में कोई मुश्किल नहीं लगती है, खुशी खुशी कर देते हैं, है ना। मुश्किल कहाँ लगता है, योग में मुश्किल लगता है। तो योग में मुश्किल नहीं है, देखो अंदर में बैठा हुआ ना, इसलिए तो निकल रहा है मुश्किल लगता है। तो मुश्किल शब्द खत्म। बाबा कहते हैं पहले तो दृढ़ संकल्प ये करो कि आज से मुश्किल शब्द हम डिक्शनरी में ख़त्म कर देंगे। वो पता नहीं किसने डाल दिया हुआ है मुश्किल शब्द। तो मुश्किल शब्द से मुक्ति। फिर दूसरा व्हाट, व्हाई और हाउ। तो व्हाट अर्थात अगर व्हाट आए तो फ्लाई करो। तो व्हाट कहाँ कहाँ आता है, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या आता है, ये क्या हो रहा है, क्या करेंगे, है ना। तो एक लिस्ट अपनी अपनी बनानी है, क्योंकि खाली वो शब्दों तक सीमित नहीं रखना। वो तो बाबा हम सबको होमवर्क देते हैं। तो क्या अगर शब्द आए तो फ्लाई करना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है, छोड़ देने का उसको, वहाँ फ्लाई करो। कल का स्लोगन था ना, कौन सा स्लोगन था कल उड़ने के लिए बताया था, हाँ, उमंग सा के पंख, उमंग सा के पंख लगाकर उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो क्या करना है, हमेशा उड़ते रहना, फ्लाई। दूसरा वाई, वाई आए तो अर्थात क्या करेंगे, वाई वाई क्यों, क्या के चक्कर में जाने का जरूरत नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, टाइम कहाँ है अभी उस चक्कर में जाने का, टाइम ही बहुत थोड़ा हमारे पास, और पेपर सिर पर हैं। अब एग्ज़ाम सिर पर हो और हम दूसरे सब्जेक्ट में लग रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम पास कैसे होंगे। बाबा कहते तुमको पास भी दोनों होना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो क्या क्यों से परे रहना है। और तीसरा हाउ, हाउ अर्थात कैसे करें, कैसे क्या करना, मुरली में सारा बताया ऐसे करना है। सबसे पहले तो योग लगाने के सारी मुरली को याद कर लो, योग करना छोड़ दो आप, मुरली करते करते योग हो जाएगा। फिर सोचेंगे नहीं मुरली भारी काम है, योग ही लगा देते हैं, मुरली तो याद नहीं हो रही। फिर पता चलेगा योग से भारी तो ज्ञान भारी है, याद ही नहीं हो रहा है। बाकी योग में कौन देख रहा है क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो शांति से। क्योंकि मन को पीड़ा होती जब ज्ञान को याद करते हैं ना, मन बड़ा दुखी हो जाता है, बोला कहाँ झंझट में पड़ा, क्यों याद करने का इसको। लेकिन योग को सहज करने के लिए मन को पीड़ा देनी है, ये मीठा दर्द है मन को मन मनोभव करने का है। तो वाह नहीं, हव नहीं करना, हव करेंगे तो कौन आ जाएगा, हवा। ये कहाँ रहता है हवा, हवा क्या होता है, किसको कहते हैं हवा, हाँ कोई डरावनी चीज़ होती है, शैतान का नाम है। जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको माँ बाप डराते हैं, सो जाओ नहीं तो हवा आएगा, शैतान आएगा, तो ये डर। तो ऐसा इस प्रकार का कोई डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। तो ये तीन बातों से मुक्त, चार बातों से मुश्किल, व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये सब बातों से मुश्किल। तो बाबा कहते जन्मदिन तो मनाया, मनोरंजन भी इस जीवन में आवश्यक है। तो मनोरंजन के लिए बाबा ने छह बातें बताई, कौन कौन सी, क्या करते हैं, सबसे पहले दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर केक काटते हैं, फिर झंडा फहराते हैं, फिर गीत गाते हैं, फिर डांस करते हैं, फिर मिठाई खाते हैं। तो ये कितना बड़ा मेला लगा दिया बाबा ने। तो दीप कौन सा जलाना है, देखो एक एक बाबा के वाक्यों में वो स्थूल चीज़ों के साथ कैसे ज्ञान को जोड़ा है, कि हम इन सब स्थूल चीज़ों को देखते हुए ज्ञान को जोड़ दें उसके साथ में। तो दीप कौन सा जलाना है, दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ, अर्थात दृढ़ता। जहाँ बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता वहाँ सफलता है, दृढ़ता कमजोर तो सफलता भी वैसे कम मिलेगी। तो दृढ़ संकल्प का दीप हमेशा जलते रहना चाहिए। दूसरा केक, केक की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी, केक को क्या करना है, पहले तो बनाना पड़ेगा केक, केक है ही नहीं तो काटेंगे कहाँ से। तो केक कैसे बनाएंगे, केक कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी बनाया हुआ है, अच्छा ठीक है। हाँ तो केक को क्या करना है, बाबा ने कहा उसको पूरा नहीं खाया जाता है, उसको काटते हैं, है ना। तो काटने के लिए बाबा ने क्या कहा, अपने बोझ और संपन्नता और संपूर्णता में रुकावट डालती है, उन्हें कमी कमजोरी को काट दो, खत्म कर दो। फिर क्या करो, केक पूरा नहीं छोटा टुकड़ा तो उसको खा लो, अर्थात शक्ति धारण करो। वंडरफुल है भगवान के महावाक्य, कैसे कैसे एक एक बात को समझाते हैं। अगर हम केवल एक ही बार मुरली को पढ़ते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, ऐसे चली जाती है, फिर सोचते इसमें क्या है, वैसे ही लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, गहराई से पढ़ते 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 फिर पता चलता है इसमें तो बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। तो केक को काटना, जब भी केक बनाएंगे या केक खाएंगे तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हमेशा याद आना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा क्या करेंगे, झंडा, झंडा कहाँ फहराएंगे, झंडा फहराते समय क्या स्मृति रहनी चाहिए, हर संकल्प हर कर्म हर बोल में बाप की प्रत्यक्षता, अर्थात जो बाबा की एक्टिविटी है, बाबा की सोच है, मेंटेलिटी है, वैसी हमारी मेंटेलिटी रहनी चाहिए, वैसी हमारी सोच रहनी चाहिए, वैसे हमारे से वाइब्रेशन निकलते रहने चाहिए, वैसे हमारे से वो प्यार की बरसात होती रहनी चाहिए, वो रूहानियत का अनुभव होते रहना चाहिए, वो अलौकिकता का अनुभव होते रहना चाहिए। बाबा को के आते ही कैसे माहौल सारा बदल जाता है, जब दादियाँ आती थी दादियों को देखते कैसा माहौल बदल जाता था, ऐसे लगता था दादियों के अंग संग रहने से कि जैसे ब्रह्मा बाबा इनके अंग संग, ब्रह्मा बाबा ही उनमें परिलक्षित होता था, दिखाई देता था प्रैक्टिकल रूप में। तो हमारे भी हर कर्म में बाबा के चरित्र दिखाई दे, इस चित्र में चरित्र दिखाई दे, स्वयं सृष्टि के पिता के आदि पिता के, ठीक है। तो हर कर्म हर बोल हर संकल्प में बाबा की प्रत्यक्षता किसी न किसी रूप में, किसी से मीठा बोलना, समय पर किसी को सहयोग दे देना, किसी के दुख दर्द सुन लेना, किसी को अगर थोड़ा टाइम चाहिए उसको टाइम दे देना, ये तो दुआएं कमाने का साधन है। अगर हम अभी दुआएं नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, ये दुआओं कमाने का तो सीज़न चल रहा है और ये सीज़न पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये था, क्या किया अभी हमने, झंडा फहराया, और आगे क्या करेंगे, बाबा ने कहा डांस, खुशी की डांस करो। तो बाबा ने कहा खुशी अंत तक रहनी चाहिए, कोई भी तुम्हारी खुशी को चुरा ना ले, जब तक जीना है तब तक खुश रहना, ये संकल्प लो, व्रत करो, ये कुछ भी हो जाए हमारी खुशी ना जाए, भगवान के बच्चे और दुखी। बाबा ने कहा एक उदास हो तब फोटो अपना निकालो, अब जब कोई उदास होगा तो फोटो निकालेगा कोई अपना, उसमें तो मन ही नहीं करेगा फोटो निकालने का, लेकिन मन में स्मृति तो रहती है ना, मन में फोटो निकालो तो एक फोटो खुशी का रखो एक उदासी का रखो, तो हमेशा खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं, सारे खुशी के पॉइंट अलग से लिखो कि मेरी खुशी जीवन में कैसे बनी रहे और बाबा ने खुशी के बारे में क्या क्या रहा है जो हमको याद है, और जो हमको नहीं याद है तो मुरली में ढूंढो उसको, अपने को होमवर्क देना है। और क्या कहा बाबा ने गीत के बाद, डांस के बाद, जो खुश रहेगा वो खुशी भी देगा अर्थात मिठाई खाएगा, मिठाई खाएगा भी और मिठाई खिलाएगा भी, और गीत गाएगा, कौन सा गीत, मेरा बाबा, अगर बैटरी स्लो हो गई तो मेरा बाबा उल्टा आ जाएगा रेडियो या टेप रिकॉर्डर की बैटरी डाउन हो जाती तो क्या करते थे उसको, उसको फिर धूप में रखते थे, है ना। तो हमको भी हमेशा ज्ञान सूर्य के सामने रहना ताकि हमारी आत्मा रूपी बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहे, कम नहीं हो। जैसे मोबाइल क्या कई बार क्या होता है, चार्जिंग में तो लगाते लेकिन स्विच ऑफ ही रहता है, ऑन ही नहीं करते, फिर बाद में ऑन तो है ही नहीं। तो ऐसे ना कि हम योग में बैठे हैं और स्विच ऑन ही ना हो हमारा, ये सारी स्मृतियों का स्विच है। पिछले संडे की मुरली में था ना, क्या पिछले संडे की मुरली का टाइटल क्या था, ये स्विच से याद आया, क्या था स्मृति, कौन सी, सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो डैश 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 तो अंधकार समाप्त हो जाएगा, देवान का अंधकार समाप्त हो जाएगा ना। तो ऐसे लिंक जुड़ जाएगा, जब भी कोई ऐसी पॉइंट आएगी तो क्या करना, हमेशा बैटरी फुल चार्ज करके रखनी है। फिर बाबा ने किससे मिला, बाबा किससे बात की, विदेशियों से, बाबा कितनी सेवा तो बहुत की, कौन सी सेवा के लिए, ब्रह्मा बाबा की स्टैंप तैयार की, है ना। तो सब ने भाग दौड़ की, मधुबन वालों ने भी पावरफुल योग लगाया, विदेशियों ने भी लगाया, बाहर वालों ने लगाया, सफलता मिली। लेकिन ऐसा ना हो कि वो अनुभव कराने के लिए स्टैंप तो दे दी लेकिन हम खुद ना अनुभव करें। तो हमेशा अनुभव करना है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हमारे अंग संग हैं, उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। ये थोड़ा सा टाइम है हमको ये अनुभव करने का है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्मृति में रखनी है। और भटकती हुई आत्माएं आएंगी बड़ी फास्ट स्पीड से, 10G स्पीड से आएंगी, 5G 6G नहीं 10G स्पीड से आएंगी, तो उनको ठिकाना कैसे देंगे। लंबे समय तक आत्मा की स्मृति में रहेंगे, हल्के रहेंगे। बाबा कहते हर एक के मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखो, शरीरों को देखते हुए भी ना देखो, शरीर दिखाई देंगे लेकिन शरीर की स्मृतियाँ हमारे मन में नहीं अंकित होंगी, वो नहीं खींचेंगे, इसकी आँखें ऐसी है, इसका मुख ऐसा नहीं, दिखाई दे रहा शरीर लेकिन स्मृतियाँ हमारी देह के तले इर्द गिर्द नहीं घूमेंगी। तो हमेशा मस्तक में चमकता हुआ सितारा, ये हमारी वृत्ति बनी रहनी चाहिए। और फिर बाबा ने कहा ऑलराउंडर सेवादारी कौन है, जो सेवा के महत्व को समझते हैं वो ही ऑलराउंडर सेवादारी है। तो कितनी सारी बातें थी, अब देखेंगे टाइम तो हो गया 2 मिनट में, कितने सारे व्रत इस मुरली में कहे, तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 25 व्रत है इसमें। सबसे पहला व्रत है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, ये जो वरदान में है तो हमको ये रहना, हमेशा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का व्रत रखना है, अपना एक चिंतन करना उसके ऊपर तैयार। दूसरा है बाप की कंपनी में रहने का व्रत, संग संग साथ में रहने का व्रत, छोड़ना नहीं। तीसरा है बाप की छत्रछाया में रहने का व्रत। चौथा है दृढ़ता का संकल्प, दृढ़ता का व्रत, दृढ़ता नहीं छोड़ेंगे। और पांचवा है एंजॉय, एंजॉय करना है इस ब्राह्मण जीवन का, एंजॉय करना है। कैसे, बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था मन मनाव अभी मनोरंजन है, तो एंजॉय करना। नेक्स्ट है भोजन का व्रत, भोजन के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं हमको खुद ही चिंतन करना है। नेक्स्ट है सदा गीत गाने का व्रत। नेक्स्ट है सदा हल्के रहने का व्रत। नेक्स्ट है सदा मैं को बलि चढ़ाने का व्रत। नेक्स्ट है सदा जागरण का व्रत। फिर नेक्स्ट है सदा खुश रहने का व्रत। नेक्स्ट है सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहने का व्रत। नेक्स्ट है मुश्किल शब्द समाप्त करने का व्रत, खत्म माना खत्म। नेक्स्ट है न्यारा प्यारे रहने का व्रत। नेक्स्ट है इस ड्रामा की अविनाशी नींद को साक्षी होकर देखने का व्रत, कुछ भी हो रहा है ड्रामा में उसको साक्षी होकर देखते रहना है। नेक्स्ट है पास विद ऑनर बनने का व्रत लेना है। नेक्स्ट है क्यों क्या और कैसे से परे, व्हाट व्हाई एंड हाउ, इससे परे। नेक्स्ट है सोमान में रहने का व्रत, कौन सा सोमान बताया आप बाबा ने मुरली में, वैसे तो बहुत सारे सोमान है, पूज्य शालिग्राम मास्टर सर्वशक्तिवान, कितने सारे सोमान है, तो हमेशा सोमान में स्थित रहना। नेक्स्ट है स्वीट होम जाने का व्रत, सारे दिन में बार बार स्वीट होम जाने का अपने से एक प्रतिज्ञा करनी है। नेक्स्ट है ट्रस्टी रहने का व्रत। और नेक्स्ट है उमंग उत्साह में रहने का व्रत। नेक्स्ट है व्यर्थ के गेट को खत्म करने का, व्यर्थ का गेट था ना, ये व्यर्थ का गेट कौन खोलते हैं, ये तीन शब्द तो खोलते हैं। और लास्ट वाला है अपनी वीकनेस कमजोरियों को समाप्त करने का व्रत। तो कितने सारे व्रत हैं, तो मुरली को नए नए एंगल से पढ़ना, ए बी सी डी लिखना और मुरली के शब्द अलग अलग करते जाना, तो ताकि चिंतन नया चिंतन और अपना चिंतन दूसरों को बांटना, ताकि दूसरों को भी थोड़ा रास्ता मिले। अगर अपने चिंतन को हम अपने तक रखते हैं ना, तो फिर वो रुक जाता है, वो ज्ञान ठहर जाता है, वहाँ से दुआएं नहीं मिलती हैं। तो हम दुआएं लेना और दुआएं देना, इसके रास्ते खुद तलाशने हैं। तो कितनी सारी बाबा ने बातें बताई, तो क्या करेंगे, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह सुखमय अवतरण, ये हम सब का है बाबा के साथ साथ में। तो ऐसी शिव जयंती की बाबा हम सब बच्चों को कितनी बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। अच्छा, ओम शांति।